सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय श्रीकृष्णाय कृष्णाय चैतन्यनाम्ने गोवृत्तिषु हा कृष्ण हे देवि काकु भरतहृदयाद्यवाच जाचे निपत्तभूविदण्डवतोद्भटार्ति आस्याप्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वाकेतवगणे गणनां विधि अङ्गश्यामलिं छटाभिरवितो मन्दे कुतेन्दीवरं चड्डं जागुडरोचिसां विदधतं पट्टम्बरश्च श्रिया बृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिनामोदनशितोज्ज्वलमुजं ध्यायेन्ताम् भक्त्या विहीनाय परादलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणान् श्रीगौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत द्वैपायनो विरहकातरया जुहव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् नजिमामित्वया विन इति विज्ञानराधेतमहिमां भजामि राधामरुविन्दनित्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रं वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिः बृहद भगवतामृत का अंतिम अध्याय हम लोग पाठ कर हम लोग अभी तक ब्रजमंडल परिक्रमा की और विभिन्न स्थानों में वहाँ की लीला कथाओं का वर्णन किया। किस लिए किया? एक होता है साधन भजन, अपने उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए। मैं पीछे हो सकता छे ना, मैंने बोल चीज सामने दिखा हमारा कितने दिखे ना करते तुम्हारा ठीक पीछे ने बस दीवार फोन को ई ना ऊंचाई ने जी हमारे पीछे के लिए जरा पाका उस्ताद घुघु ओरा पीछे बस हम लोगों ने सुना है कि भक्ति एक अपने दौर भक्ति दो प्रकार से होती है। एक भक्ति होती है भगवान या भगवत भक्तों की कृपा से, वो कृपा सिद्धा भक्ति है। वैसे भाव भी, भक्ति भी, प्रेम भी, सभी। और दूसरी होती है साधन भक्ति के। साधन भाव व साधन भक्ति भी कृपा ही है। तो भी उसका उदाहरण भी सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिया। किसी के घर में कोई संत गए तो उन्होंने पूछा जी प्रसाद आप कैसे पाएंगे, और रसोई बना करके प्रसाद पाएंगे या ठाकुर जी का भोग लगाए हम आपको खिला दें। भैया हम इतना परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, आपके घर में जो कुछ भी ठाकुर जी का भोग लग गया है वो हमको दे दीजिए, हम खा लें। बस उनको वो परोस दे दिया, ठाकुर जी का जो भोग लगा था प्रसाद पा लिया एक मिनट में। और दूसरा आदमी जो था वो बोला जी नहीं हम अमनिया करेंगे, सपाकी मैं हूँ अपने सपा। तो अच्छा तो क्या चाहिए, तो हम उसको चावल डाल घी और ये सब सामान दे दीजिए। तो उसने दे दिया, कहिए तो मैं रसोई कैसे बनाऊंगा, तो मुझको चूल्हा भी चाहिए। तो चूल्हा देता, लकड़ी कहाँ से ले आऊँगा, तो लकड़ी भी दे दिया, नमक भी दे दिया, सब कुछ उनको लेकर के दिया। फिर उन्होंने रसोई बनाई, पानी भी ला दिया। तो फिर उन्होंने रसोई बनाई, दो चार घंटे में बेचारे ने वो किया, तब फिर भोग दे करके पाया। तो वो भी देना ही है, वो जो साधनों को जुटाना माने देना है, लकड़ी चावल दाल तरकारी आदा मैटा चूल्हा चक्कर बेलना चाकी ये सब देना, ये भी देना ही है। किंतु इसमें अपने आप वो सब कर रहे हैं, दे दिया इसके बाद में कर रहे हैं। तो ऐसे साधन भक्ति भी मत समझो कि हम साधन के द्वारा सब हम अपने से कर लेंगे, ऐसा नहीं। इसमें भी भगवान और वैष्णव की कृपा से ही साधन की सामग्रियाँ मिलती हैं, तो इसमें थोड़ा सा विलम्ब होता है। और दूसरा होता है कृपा सिद्ध में साथ ही साथ बना बनाई वो मिल गई भगवान की कृपा। तो हम लोगों ने इसमें जो ब्रज्म के विभिन्न जगहों में गए, उद्धवकारी गए, कदम्बटेर गए अथवा भांडीर बन में गए, राधा कुंड में भी जाएंगे, गोवर्धन में हम लोग गए, द्वादश वनों में गए। इस किस लिए गए, बना बनाई चीज की को ग्रहण करने के। कृष्ण ने कहा है, नारद जी ने मांगा है, जो कोई आपकी लीलास्थलियों में श्रेष्ठ लीलास्थलियों में जाएगा, वहां की धूली सिर पर लेगा, उसकी कामना करेगा तो वो जल्दी से देगा। तो इसलिए हम लोग वहां पर गए थे ना, वो चीज जो हम साधन के द्वारा कोटि कोटि कल्पों में पाएंगे, 10-20 कल्प में पाएंगे, धाम की कृपा से हम लोग सजीव पाए, इसलिए वहां पर हम गए। और साधन भजन की जो बात है, ये भगवान की दी हुई साधु संग, गुरु साधु संग या भगवान की कृपा से ही गुरु भी मिलते हैं, ये साधन रूप सनातन इत्यादि के द्वारा किए हुए हैं, रागानुगा हो अथवा वैदिक भक्ति हो, उनके मुख से हम इसके सुनते हैं जैसे क्या क्या हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए साधन भजन लगते हैं। तो साधन भजन के लिए ये सब चीजें हैं, इसमें वो भी कृपा का कुछ संदेश मिलता है, इंगित मिलता है इसी में। तो अब यहाँ पर ये बतला रहे हैं कैसे हम लोगों को साधन भजन करना चाहिए और कैसे भगवान की कृपा या वैष्णव की कृपा हमको ग्रहण करनी चाहिए। तो हम लोग उन स्थानों में गए, उनसे वहां पर प्रार्थना किया और धाम की कृपा हो, धूली की कृपा हो, ऐसे वैष्णव की कृपा हो, क्योंकि वो चीज सहज ही हमारे हृदय में स्फूर्ति, इसलिए वहां पर अभी वृंदावन में जाएंगे, राधा कुंड में जाएंगे, सब इसलिए। और कुछ चीजें हम लोगों को चाहिए, उसी के सहारे मत बैठो, कुछ करो भी नहीं तो कृपा तुम वो करेंगे किंतु तुम लोग ले नहीं सकेगा। मान लिया कि एक आदमी है, वो किसी के यहाँ गया और उसने राबड़ी खीर और घी में तली हुई कचौड़ी और ये सब दे दिया और उसको पेट का रोग है, आम निकल रहा है, खूनी आम है, तो वो ग्रहण करेगा कि नहीं, यदि करता है तो क्या होगा। इसलिए कृपा भी धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए वो हमको कृपा करके हमारा आधार भी दे सकते। मज्जा से महाप्रभु जी ने पात्र दिया और वो भक्ति भी, तो वैसे ही वो हमारे ऊपर में कृपा करें। उसके लिए हमको ये सब चीजें बनाना है, प्लेटफॉर्म अपने हृदय में, वो साधन के द्वारा। इसलिए साधन के लिए ये सब चीजें हम लोगों को पहले देखनी चाहिए, क्यों लीला कथाओं के श्रवण से ही होगा तो, किंतु उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए। इसलिए हम लोगों को कुछ साधन बनना, साधन जन्य परिश्रम देखेंगे कृष्ण और उनकी कृपा भी देंगे, तो साथ साथ दोनों मिलने पर काम। इसलिए साधन भजन में भी हम लोगों को पिछड़ना नहीं है। गए राधा कुंड के पास में, प्रार्थना बस हो गया, स्नान कर लिया, डुबकी लगा ली, हो गया, नहीं। इसलिए इन सब चीजों की भी जरूरत है, साधन भजन। कैसे साधन भजन होगा? तो ये होगा साधु संग में। साधु संग नहीं होने पर कोई भी साधन नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान अनुग्रह करके पहले साधु संग में दे देते हैं, जो कि भजन करने वाले हैं ऐसे लोग। और साधु संग मिलने पर भी उनके बातों को ग्रहण नहीं किया, केवल उनका संग लिया, संग तो किया नहीं, बाहरी किया, और फिर तक उनके गुण, उनके आचरण और विचार नहीं लेगा तो फिर क्या होगा? इसलिए दोनों चीज ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की कृपा के लिए प्रार्थनाएं होनी चाहिए, और सर्वार्थ इस रूप में निष्कपट रूप में उनके जो आचरण है, विचार है, साधन भजन के जो चीजें हैं, उस सबको यह साधु संघ के अतिरिक्त कहीं नहीं। इसलिए सनातन गोस्वामी जी बृहद भगवतामृत वर्णन कर प्रारंभ से लेकर साधन की एकदम पहली स्थिति से लेकर और अंतिम स्थिति तक का, सिद्धि तक का भी वर्णन किया है। तो हम लोगों को साधन के पहले स्टेप से लेकर के चलने की चेष्टा करना चाहिए। मैं तो चाहता था जो मन शिक्षा उपदेशामृत शिक्षाष्टक ये सब ग्रंथ भक्ति दशामी सिंधु का पहला पोर्शन थोड़ा सा जो साधन वाला है, ये सब हम लोग का तो करीब करीब 10-12 दिन तो चला गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तब हम लोग चेष्टा करेंगे कुछ साधन भजन का भी हो, भगवान की कृपा के लिए भी प्रार्थना की। तो इसमें कह रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, महत्संगम महात्मम एवं एतत् परम अद्भुतम कृतार्थो जेन विप्रोसौ शब्द अभूत तत्स्वरूपवत्। महत्संग का ऐसा ही महात्म है कि परम अद्भुत महात्म उसका है। साधारण में अद्भुत मैंने क्या, साधारण सचराचर में होता है वैसा नहीं, अद्भुत विचित्र लौकिक रीति के अनुसार में नहीं, जो नहीं होना चाहिए उसको भी करा देता है, ये अद्भुत उसका विचित्र फल है। कृतार्थो जेन विप्रो, विप्रह असौ, अरे जिसे कि ये ब्राह्मण, यह ब्राह्मण कृतार्थ हो गया। कौन ब्राह्मण? धन संपत्ति के लिए ब्रज को छोड़कर के, मथुरा को छोड़कर के गया आसाम प्रदेश के, कौन सा कमरखंड, और वहां पर देवी ने किसी प्रकार से कृपा करके उनको गोपाल मंत्र दे दिया। वो भी उसका आचरण कैसे करना, अनुष्ठान करना चाहिए, कितना जप करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया। हम लोग के तो गुरु तो दे देते हैं, सवेरे स्नान करके पूर्व मुख हो करके 10 पाप करना, 2 पाप तो 10 पाप करना, शाम को 10 पाप, इतना तो बतला ही देते हैं। तो वो देवी कुछ नहीं बतला सके, बस जाओ तुम्हारी सब सिद्धि इससे हो जाए। और वह बेचारा देवी के बातों का पूर्ण रूप से विश्वास करती है। हम लोग को शायद इतना विश्वास गुरु के वचन पर नहीं होता है, किंतु उसका पूर्व जन्म का कुछ संस्कार ऐसा था, एक तो जन्म दे दिया मथुरा में, और दूसरे उसके ऐसे संस्कार थे जो उस पर बातों पर विश्वास कर। और कब करना चाहिए, कैसे करना है, नियमित करने लग गया, जो भी मौका समय मिलता तो भी वो करने लग गया। और देखो जो इसका ऐसा प्रत्यक्ष फल क्या हुआ, सब जितनी धन वैभव सब पाने की लालसा थी वो सब समाप्त हो गई। ये मंत्र का फल है, पहला चरण अनर्थ दूर हो गया। लौकिक जितने प्रकार की पाने की लालसा थी वो सब लालसाएं दूर। मंत्र का ये नहीं फल, हम बहुत दिन से मंत्र जप रहे हैं, हमने धन की लालसा की, प्रतिष्ठा की लालसा की, या उसकी प्रतिष्ठा की कामना आ गई, धन की कामना आ गई, और अभी धन पर अभी लोभ रहा, इच्छाएं रही, तो ये मंत्र जप का फल नहीं हुआ। हम लोग को यही गड़बड़ हो जाता है, मंत्र जपते हैं किंतु इच्छाएं नहीं, क्यों नहीं होता, इसलिए कि उस तरह से विश्वास के साथ में हम लोग नहीं करते, और जो करते हैं जरूर उसका हो जाता है, कुछ दिनों में ही एकदम परिवर्तन हो जाएगा, जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा, अवश्यंभावी है। पानी में जाएंगे, स्नान करेंगे, हृदय में शीतलता नहीं आएगी, शरीर में शीतलता नहीं आएगी, और शरीर की दूषित चीजें नहीं दूर हो जाएंगी, यह कभी होता है, किंतु स्नान किया और गंदगी लगी रही तो इसका मतलब क्या हुआ, स्नान गंदे पानी में किया, स्नान नहीं किया, ऐसे ही। इसलिए साधन भजन करने से जरूर वैराग्य आएगा, साधन भजन करने से जरूर सांसारिक वासनाएं दूर होंगी ही, नहीं होता है तो हमारे अंदर में कुछ कमी है, जरूर कमी है। बतलाया, यदि हम भजन करते हैं भजन का फल अवश्य, किंतु यदि धन पुत्र परिवार प्रतिष्ठा इत्यादि में यदि वो निक्षिप्त होता है, शान्न फल जनकम शीघ्र में वात विप्र, जल्दी से फल नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कई श्लोक है, यदि भजन करते हैं
परेशान
है? नहीं, तो वो भजन करते हैं किंतु लालसा बढ़ जाती है धन की, पुत्र की, और सब संसार की प्रतिष्ठा इत्यादि, उसमें चला केवल अभिमान ही हाथ लगता है, केवल दंभ।
मौन व्रत सुत तप तेनाम देखा रहो यब तथाय श्रद्धाय अपवर्य वार्ता भवन सुत तु दामते
काम। भागवत पढ़ेंगे ना, इसे भक्ति होती है, भजन करते हैं उसे भगवान में प्रेम होता है, किंतु दाम्भिका नाम की होवे, दंभ बढ़ जाता है। मौन मौन व्रत अध्ययन अध्ययन इत्यादि, भागवत का अध्ययन भी, ये सब जितनी चीजें हैं ये दाम्भिकों के लिए दंभ बढ़ा देता है, भक्ति नहीं होती, इसलिए दंभ इत्यादि छोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति होनी चाहिए, तब जाकर के शुद्धा होती है। इसलिए यहाँ कहा है महत्संगम महात्मम एतत् परम अद्भुत, वो कैसा अद्भुत ये उनका प्रभाव है, जेनो असौ विप्रो, विप्र जो समस्त प्रकार की कामनाएं, धन की कामनाएं लेकर के, विवाह इत्यादि की कामना लेकर के गया, और देवी ने उसको मंत्र दे दिया, और उस मंत्र के प्रभाव से क्या हो गया, सत्संग पाया, किसका, स्वरूप का, और कैसा हो गया, स्वरूपवत सद्यो अभूत, सद्य ही सद्य, केवल हरि कथा सुना, उसको साधन भजन करना नहीं पड़ा, सत्संग का नहीं है। परीक्षित महाराज जी संग की महिमा देखो, कोई साधन भजन नहीं किया, केवल हरि कथा सुना, उनके संग में रहे, और उसे क्या हुआ, भगवत प्रेम उन्होंने लाभ किया, साधन भजन की अपेक्षा भी नहीं रही और उनको प्राप्त हुआ, ये है साधु संघ की महिमा। कविचि वो व्याख्या में कहते हैं कि बहुत हमने सुना है पढ़ा भी है कितने कल्प में तब श्रुतियों को और रामचंद्र जी वाले 60,000 कहने कितने कल्प हो गए तब जाकर के मंत्र की सिद्धि हुई गोपाल मंत्र की। अच्छा इतना दिन क्यों लगा इतना कल्प इसको समझो जो शब्द जल्दी हो इसको भी जल्दी समझो। हम लोग का कितने कल्प से जन्म हो रहा है कब से जन्म हो रहा है
जब से सृष्टि है तब से
प्रारंभ सृष्टि सबसे ही हो रही है तब से हम लोग हैं। उनको तो हो गया वो चले भी गए नित्य लीला में प्रवेश कर दिए और हम लोग देखो जी कहां पड़े हैं और सर लोग हैं जो और कहां पड़े हुए हैं जल्दी ही समझना चाहिए। इसलिए ऐसा मत समझो जैसे 2 दिन में 1 महीने में 10 दिन में महाराज हम कौन भूति नहीं हुई इसलिए उत्साहात निश्चयाति इसको ठीक रखना। तो यदि कहो खूब प्रयत्न पूर्वक करने से भी साधन भजन भगवान की कृपा विशेष के द्वारा अत्यंत विलंब से जो भक्ति पाई जाती है इन्होंने कल्पों कल्पों में भगवान की कृपा को पाई और वो जो ब्राह्मण कोई भी योग्यता नहीं थी धन के लालच से गया वृंदावन को छोड़ करके गया वहां और फिर वहीं से आकर के सिद्धि कहां हुई इस वृंदावन में हुई। ये अद्भुत परम महात्मा युक्त वैष्णव के संग का प्रभाव है क्योंकि बहुत जन्मे में होता वो आया वहां से और कथा सुनने लगा। स्वरूप जी भी कथा सुनाने के लिए पहले से तैयार बैठे थे कुंज में और वो गया सोचा कि कोई रो रहा है ना गा रहा है समझ में नहीं आया और उसको अपने जीवन की बीती हुई बातें बतलाई कैसे मैं भगवान की कृपा पाया और वही बतला रहे हैं उसको सुन सुन करके जब सब कुछ बतला दिया तो उसको ज्ञान तो हुआ तत्व तो ज्ञान किंतु अनुभूति नहीं उसको प्रेम वैसा नहीं गोप कुमार को जैसा प्रेम है ऐसा प्रेम नहीं सब कुछ सुन लिया जैसे हम लोग सुनते हैं ना और ऐसे मालूम होता है कि हृदय शून्य है हम लोग की तो वासनाएं भी नहीं जाती हैं तो उसकी वासनाएं तो खत्म हो गई थी किंतु प्रेम की अनुभूति नहीं हुई। गोप कुमार जी हरिनाम कर रहे हैं आंखों से अविरल धारा बह रही है पशुओं की और रो रहे हैं हृदय उनका द्रवित हो रहा है इनका कुछ नहीं तो अनुभव कर रहे हैं इस चीज को अरे की तो हम लोग प्रश्न करेंगे इसने तो साधन भजन किया नहीं और थोड़ी देर तक सुना ये उपाख्यान सुनाया और जब देखा जैसे इसको प्रेम नहीं हुआ कुछ तत्व ज्ञान हो गया है तब उन्होंने कहा जाओ तुम कभी प्रेम नहीं हुआ अनुभूति नहीं हुई बस उसके ऊपर में सिर पर हाथ रख दिया बस एकदम वैसे ही स्वरूप वत हो गया जैसे वो रोते थे अनुभव करते थे लीलाओं को नित्य देखते थे भगवान के वो परिकर थे वैसे ये भगवान का परिकर हो और फिर वो देखा कि ये सर 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 करता हुआ एकदम ग्लोब
वृंदावन में पहुंच गया।
तो ये वैष्णव की अद्भुत ये कृपा है। ये कैसे हुआ? इसी आशंका के लिए कह रहे हैं महत संगम एतत् परम अद्भुतम एत। ये वैष्णव संघ की ऐसी महानता कि एक आदमी भी जैसा भी हो उनके संग से इस प्रकार से सहज ही पा सकता है। जैसे बंसी है ना, उसमें बंसी में अपना कुछ नहीं है, जैसा जो उसमें स्वर देगा वैसा ही वो गुरु। ऐसे गुरु के समीप वैष्णव के समीप जाने पर ऐसा ही होना होगा, तब तो हो जाएगा निष्कपट होकर के। वो दुराचारी हो कोई बात नहीं, सब कुछ उसमें दुर्गुण हो कोई भी बात नहीं, विषयों की लालसा भी हो कोई भी बात नहीं, किंतु गुरु के पास में जाए ना तो कैसे जाए? बस गुरु जी की ही आवाज उसमें रहे। ये बहुत कठिन है। अब अपना कुछ ना रहे, सब कुछ उनका हो जाए, वैष्णव का हो जाए, गुरु का हो जाए, जो हमको भजन की शिक्षा दे रहे उनका हो जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं मोर इच्छा, अब हमारे लिए कोई भी अपनी चीज अब नहीं रह जाएगी, तब वो दे करके देंगे। इसलिए कहते हैं महासंघ का ऐसा अद्भुत फल है। वस्तुतः महासंघ का ऐसा ही अद्भुत महिमा है कि वो ब्राह्मण साधन भजन न करने पर भी नहीं करने पर भी संपूर्ण से वो कृतार्थ हो गए। अजय कैसे संभव हुआ? हुआ कैसे? कहे ऐसा संशय मत करो, भगवान के प्रति और वैसे सिद्ध महापुरुषों के प्रति, वैष्णव के प्रति यदि वो संत है, वैष्णव है, ऐसी शंका मत करो। ये कैसे हो गया? वो क्या है, पंगु लंग है, मुखम करति वाचालम पंगुम लंग है ते गिरिं यत् कृपा तमाम वंदे
शीघ्रं तं दिनतार
परमानंद माधव। ये हो जाएगा, संदेह मत करो। संदेह यदि हुआ तो सब चौपट चौपट हो जाएगा। भक्ति के विषय में, वैष्णव के संबंध में, जमुना जी के प्रभाव, गोवर्धन जी के प्रभाव के संबंध में, धाम के प्रभाव के संबंध में कोई प्रश्न मत रखो, संशय ही मत रखो, ये जरूर हो जाएगा। ये जिसका कमी जितना है, जिसको जितना संदेह है, इसलिए उनका नहीं हुआ, नहीं तो अवश्य अभी होगा। दुर्वृत्तार्क उनका महात्मा है, नाथन गोस्वामी दुर्वृत्त तर्क से अतीत है। तर्क के द्वारा वो नहीं समझे कैसे हो गया। इसलिए वैष्णव की कृपा से सत्संग के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है, संगो जा संस्कृते हेतु सत्सु विहितो अधीया सैव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो ज संस्कृतेर हेतु, जो संग कुसंग संस्कार संसार का हेतु है। संसार में हम क्यों आते हैं? कृष्ण को भूलकर, और असत्संग में पढ़ने से असत कामनाएं होती हैं, और उन कामनाओं का भोग करने के लिए संसार में अनादिकाल से जीवबद्ध है। कभी देवता, कभी दानव, कभी यक्ष, कभी जानवर, कभी मनुष्य, कभी देवता इत्यादि होता रहता है। कीट पतंग नाना जूनियों में जाता है और इसी चक्र में घूम रहा है। ये संसार में का हेतु है। यदि वो विहितो अधीया, यदि यह बुद्धिपूर्वक नहीं किया गया है, जान नहीं किया गया है,
जैसे आग में हाथ रखने से जलाएगा, अनजान में भी रखो, जान कर रखो अनजान में रखो, वो आग जलाएगी हाथ। ठीक वैसे साधु संग उससे भी अधिक शक्ति संपन्न और प्रभावशाली। जानबूझ कर साधु संग करो, अधिया करो, जैसे जानबूझ कर कृष्ण नहीं किया, अनजान में ही दुराचारी दुष्ट अद्वैतवादी भक्ति रही स्त्री संगी का संग किया तो क्या होगा, संसार का हेतु हो जाए। वैसे आप अभिया माने बिना जानबूझ करके साधुओं का संग कर दिया, बाई चांस भी हो गया तो क्या हुआ, सयो साधु साधु सु कृतो निसंगत्वाय, इसी को कहते हैं निसंग। और उसे भवसागर को सज ही पार कर करके भगवत प्रेम को वो पा लिया। इसमें तर्क मत करो, तर्क मत करो इस विषय में, उनकी शक्ति ही ऐसी है। सनातन गोस्वामी इसके लिए कहते हैं कि देखो साधुओं के यहां सब समय जाओ, नहीं बात करते हैं तभी बैठो, जो वशिष्ठ में भी ऐसा कहा सदा संतो अभिगंतव्यो, सदा संतो अभिगंतव्यो जद्यप उपदिशन्ति न जाहि स्वैर कथास्तेषां उपदेशो भवन्ति ते। साधुओं के संग में जाओ, उपदेश नहीं देते हैं तभी तुम उनके पास में बैठो, स्वच्छंद रूप में उनके मुख से जो कुछ भी कथा निकलती है उसको उपदेश के रूप में ग्रहण करो। नहीं बात उनका चरित्र देखो, उनके पास में बैठने से अपने आप ये कामनाएं वासनाएं कहां हट जाएंगी, चित्त पवित्र हो जाएगा। यदि हम आपके पास में शीतकाल में बैठते हैं तो सर्दी नहीं चली जाती, चली जाती है। यदि हम किसी जगह जाते हैं और धूप बत्ती जल रही है तो उसका सुगंध नहीं आएगा, तो साधु में भी जो गुण है वो तुम्हारे अंदर में अपने आप उनके साथ में रहने से ही वो उसमें आएंगे, जरूर आएंगे। और यदि कृपा करके उपदेश देते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, इसलिए उनकी स्वयं कथा, स्वयं माने अनायास उनके मुख से जो हरि कथा है जो कुछ भी निकलता है सांसारिक बातें भी, तो उसको तुम सबको। हमारे गुरु जी कहते थे जब हम हरि कथा नहीं कर रहे कभी तुम लोग बैठो हमारे पास, तुम लोग उसे बहुत कुछ सीखेगा, संसार में कैसे चलना है, विषय लोगों से कैसे चलना है और जो साधारण लोग हैं उनसे कैसे बातचीत करना चाहिए, ये सब ढंग तुम लोग सीखेगा। तो हम लोग वैसे ही बैठे रहे तो हम, मैं तो बैठा नहीं रहता हूं तो जरूर प्रश्न पर प्रश्न कुछ करता और जरूर वो बड़े प्रसन्न होकर के तर्क वितर्क करने पर भी बहुत प्रसन्न होकर के सुनाते थे। इसलिए कह रहे साधुओं के निकट सर्वदा जाओ बैठो। बहुत से लोग हैं डरते हैं, बहुत डरते हैं, डरते हैं कि नहीं डरते हैं, हाँ बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं, जैसे खटमल डरते हैं आदमियों से और चूहे डरते हैं, क्यों क्यों डरते हैं ये
लोग, डर है।
बिल्ली जो है ना वो नहीं डरेगी, वो चुपचाप घिस सकती हुई चली जाएगी, कुत्ते भी नहीं डरते, गाय भी नहीं डरेगी। जो हिल मिलते हैं हमारे लिए उपकारी हैं वो नहीं डरेंगे, वो तो एकदम चलेंगे। आज जो जिसका स्वभाव है कुछ अनुपकार करने का, जो उपकार नहीं करते वो क्या करेंगे, खटमल देकर के ही भागेगा और चूहे भी भागेंगे, क्योंकि ये अनिष्ट करते हैं ना कुछ कुछ बात। तो गुरु वैष्णव से डरने की कभी कोई बात है, यदि जगत में दयालु और कृपा कृपालु है तो कौन है, वैष्णव है, उनसे कोई डराता तो क्या समझा जाए उसको, इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए। उनके यहां जाने से तो हम लोग निर्भीक होंगे,
मलिनाम तावत न शास्त्र सद्बुद्धि सद्गुरु।
ठीक, जब तक हृदय में मन मिलता है तब तक डर लगता है, और जिस समय ये सब नहीं रहेगा एकदम निर्भीक होकर के सिंह साहब के समान सिंह के पास में चला जाए, उछल करके उसकी पीठ पर चढ़ जाएगा ना, और पंजे से ऐसे ऐसे करेगा मैया को और बाप को, सिंह का बच्चा करेगा कि नहीं ऐसे 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 दूसरे लोगों के पास में जाने से डरना चाहिए। हम डरते हैं कि हमारी कोई बात प्रकट न कर दे, इसलिए हम डरते हैं। उनके मुख से जो स्वाभाविक बातें निकलेंगी वो हमारे लिए उपदेश है, नहीं निकलेगा तो भी मौन रहेंगे तो भी उनके हृदय की जो चिंगारियां हैं ना, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, गुण है, वो सब अटम उसके निकलेंगे और हमारे हृदय को साफ कर देंगे, इसलिए उनके पास न रहने चाहिए। यदि हम लोग दुर्वासा जैसे ऋषियों के पास में रहे तो और अच्छा है, क्यों वो झट हमारे सब दोषों को निकाल करके और सामने रख दे, इसलिए ऐसे महात्माओं के पास में रहना चाहिए, इसलिए उनसे भी करना नहीं चाहिए, हमारे दोषों को उजागर कर देंगे और जल्दी से हम उसको धो पोंछ करके भक्ति के योग्य हो जाएंगे। ऐसा संग जो है सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति शून्य हृदय में भी भक्ति रस एकदम परिपूर्ण रूप से प्रवाहित कर देता है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने माधुर्य कदम्बिनी में शायद ये लिखा है, पहले श्लोक, मैं चैतन्य महाप्रभु की अहित की कृपा की पुनः पुनः वंदना करता हूं। कैसी कैसी वो कृपा है, वो कृपा रूपी कृपा कैसी है, आकाश में कादम्बिनी, कृपा रूपी कादम्बिनी है, माधुर्य को वर्षा करने वाली है, माधुर्य रस ऐसी कादम्बिनी है, कादम्बरी कादम्बिनी जो मधुरस की सरस वर्षा करती है। वर्षा बात छोड़ दो, वर्षा होने के पहले जो
ठंडी ठंडी हवा से
हवा चलती है, उस मेघ से स्पर्श करके जो हवा चलती है उस हवा से क्या हो जाता है, मरुभूमि में बहुत दूर रहने वाले मरुभूमि के जो पेड़ है जो सूख रहे हैं,
गर्मा ही शांत हो जाता है, शीतल हो जाता
है, पादप जो वहां के हैं जो सूख गए हैं वो भी सरस हो जाते हैं, उसमें हरे पत्ते आ जाते हैं, फल फूलों से वो लग जाता है, बहुत दूर बड़ी दीनता के साथ में दिखा जी, मैं कौन हूँ, मैं मरुभूमि में रहने वाला वो मेघ कादम्बिनी से बहुत दूर, मेघ से बहुत दूर हूं, मरुभूमि में पड़ा हुआ हूं, नीरस हो गया हूं, घास सूख जाती है ना? और यदि वर्षा होगी या ठंडी ठंडी आएगी हवा में तो क्या हो जाएगा, सस्ता का संचार हो जाएगा, तो उसमें तो कुछ रहता है ना, जड़े रहती हैं, जड़े मट्टी में रह करके उसमें कुछ थोड़ा सा रस होता है, इसलिए जड़ से ही फिर से घास पैदा हो जाती है, किंतु जहां पर घासें एकदम सूख गई हैं नीचे से ऊपर तक, अर्थात तो पात्रता भी समाप्त हो गई है, महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है किताब कदम्बिनी कि बहुत दूर में जो मेघ से जो हवा आती है उस हवा से ही वो पादप
संजीवनीवत सरस
एकदम सरस हो जाता है, फल फूलों से लद जाता है, छाया से युक्त हो जाता है, ऐसी वो कृपा क्योंकि महाप्रभु जी की कादम्बिनी बादल है। तो इसी को कह रहे हैं कि भक्ति शून्य हृदय में भी, भक्ति शून्य माने क्या, भक्ति तुम्हारे हृदय में थी या है किंतु अभी ढक गई है विषय वासनाओं से, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण मलिन हो गया, तो उसमें भी साधु संघ के प्रभाव से वो नवजीवन का संचार होकर के भक्ति उसमें संचरित होगी, इतना साधु संघ में बल है। आज जहां तक हृदय शून्य मार्ग परिभ्रमण करिया, जिनका हृदय शून्य मार्ग में परिभ्रमण कर रहा है, माया मरीचिका की छलना में भ्रांति विलास से परिपूर्ण हो रहा है, माने माया का जो विलास है ये विलास परिवार इत्यादि भोग की लालसा कामना वासना इससे भी परिपूर्ण है। अद्वैत बात का भी भाव आ गया है जो भक्ति को नष्ट करता है, वो भी यदि साधु संग करे तो उनके हृदय में भी नित्या आनंदमय रसपूर्ण भक्ति रस संपूर्ण रूप से वहां पर प्रवाहित होने लगा। ऐसी ये कृपा है, इसलिए ये कोई विचित्र बात नहीं हुई कि ऐसे महात्मा के संग में कौन स्वरूप स्वरूप जी के संग से गोप कुमार के संग से ये माखु ब्राह्मण ये भी वैसा ही तत्स्वरूप बहुत अभुवत उनके समान हो गए,
गोप कुमार के समान हो गया।
हम लोग क्यों नहीं होंगे, जरूर हो जाएंगे। ऐसा संग रहे और संग को ग्रहण कर ले हम लोग तो जरूर हो जाएगा, किंतु कामना वासनाओं को कुछ दूर करना ये हमारे हाथ में, इच्छा तो होनी चाहिए, दूर नहीं कर सक पाते हैं। क्रोध आता है तो उनको दूर नहीं करते, किंतु क्रोध को दूर करने की लालसा तो आंतरिक होनी चाहिए, इच्छा। इच्छा तो हमारे अधीन की बात, इच्छा ही नहीं करेंगे तो नहीं जाएगी, और इच्छा यदि हम करें क्यों नहीं जाएगी, उनकी कृपा को हम ग्रहण करते हैं इसको दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से मृत भी अमृत बन जाता है, वो था मृत भक्ति थी मृत वहां, अब वो हो गई अमर बेल। अमर बेल होकर के एकदम वैकुंठ को भी पार करके द्वारका इत्यादि पार करके वृंदावन में कृष्ण के चरणों पर वो कल्प वृक्ष पर वो अप्रेम फल पक करके गिरने लगा। और मारी इस जगत में आस्वादन कर है कहाँ, फल कहाँ है, और वो मारी कहाँ है, और देखो वहां से एकदम आस्वादन कर रहा है। ऐसे ही ये भाव अवस्था, और सिद्धावस्था में क्या करेगा, उसी को पकड़ करके चढ़ते 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 एकदम गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण पर पहुंच जाएगा। अर्थात मृत स्वरूप यही मर्त देह अमृत स्वरूप भगवस्वरूप योगी दिव्य देह पत्रिनाथ ठाकुर जी ने कहा अतः कृष्णामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इसी की व्याख्या में बतला रहे चेतो दर्पण माते न वाले, कहें कि देखो इंद्रियों के द्वारा तो ग्राह्य नहीं है प्राकृत, और हमारी बुद्धि जीवा कान हृदय सभी जड़ हैं, इसमें अप्राकृत कृष्ण नाम कैसे स्फूर्ति होती है उसकी। अप्राकृत जो शुद्ध कृष्ण नाम है जो भगवत स्वरूप है वो कैसे ही स्थिति में अवतरित होता है, तो कहते हैं कि इसकी प्रक्रिया सुनो ये कैसे होता है। तो उन्होंने साधु संघ से आरंभ किया और करते 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 ले गए हैं बहुत दूर तक, कैसे पाता है। इसलिए कहते हैं कि साधु संघ से पहले जितने अनर्थ हैं अपराध हैं और आपद समूह है हमारे लिए विघ्न स्वरूप, वो सबसे पहले स्थिति पहले चरण में ये दूर हो जाते हैं। और जितने रूप में ये दूर होते जाते हैं, कितने रूप में दूर होंगे, जितने परिमाण में भक्ति हृदय में कितने परिमाण में ये दूर, अनर्थ ऐसे नहीं दूर होंगे, अनर्थ दूर होता जाएगा और भक्ति आती जाएगी ऐसा मत समझो, भक्ति आती जाएगी अनर्थ दूर होता जाएगा। इस रूप में जितने रूप में हम गुरु सेवा करेंगे वैष्णव सेवा करेंगे हरिनाम करेंगे भजन करेंगे उतने ही परिमाण में ये शुद्ध होती जाएगी और ये सब दूर होते चले जाएंगे। तृतीय स्कंध में विदुर जी ने भी ऐसा ही कहा है, क्या कहा, भगवतः कुतस्थस्य मधुद्दिशा जत सेवा सेवया भगवतः कुतस्थस्य मधुद्दिशा रतिरासो भवेत् तीव्र पादयो जत सेवाया भगवता, जिनकी सेवा करने से, किनकी सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से। शरण माने यहाँ पर साधन भक्ति, सीता भक्ति का नहीं पा रहे, साधन भक्ति के साधन व्यवस्था में भी भक्ति अप्राकृत होती है, प्राकृत नहीं होती, जो भजन करता है वो प्राकृत उसका हृदय और ये सब होगा आधार, किंतु भक्ति का अनुशीलन करते 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 उसका आधार भी उन्नत होता जाए। भक्ति किसी भी स्थिति में प्राकृत नहीं होती, अप्राकृत होती है। साधन अवस्था में जो नाम है ना वो अप्राकृत है, हरि कथा वो अप्राकृत है, भक्ति का कोई भी अंग है वो सब अप्राकृत है। हम लोगों का हृदय वैसा नहीं है, साधक हम लोग वैसे नहीं है, इसलिए उसको मिश्रा, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, संग सिद्धा, आरोप सिद्धा इत्यादि नाम है। किंतु भक्ति सब समय साधन अवस्था में भी वो अप्राकृत है। तो जिनकी सेवा से कैसा होता है, अपना देव न्याय साधु संग साधु गणे चरण सेवा कर ले, यत सेवाया भगवत कुटस्थस्य मधुदिश, यत सेवाया, यत सेवाया माने
जिनकी सेवा से,
किनकी सेवा करने से,
संतों,
कौन संत, आप जैसे, ये विदुर कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, मैत्रेय जी, मैत्रेय जी के लिए कह रहे हैं, मैत्रेय जैसे आप जैसे साधु संत लोग हैं, आप लोगों की सेवा करने से भगवान मधुसूदन कुटस्थ जो मधुद्दिश, मधु को आदेश करने वाले कौन, कृष्ण, वो कैसे है, कुटस्थ सर्वदा एक रस है, कभी भी च्यूत नहीं होते हैं, ये कुटस्थ का अर्थ बतलाएंगे आगे। करने से कुटस्थ, कुटस्थ माने दुर्गेय, जिनको बहुत साधन भजन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता।